जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिपराज कचार्य अष्टोत्तरीषत् श्री श्रीमद्भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की इस्कॉन डिविटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिपराज कचार्य अष्टोत्तरीषत् श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद की नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की गंगा मैया की जमुना मैया की तुलसी देवी की ब्रज भूमि वृंदावन धाम की माया पूर्णवद्वीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय की शिल प्रभुपाद की ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की हरि नाम संकीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भागवत सार की श्रृंखला में दसवें स्कंद के 83वें अध्याय पर चर्चा है। इसका शीर्षक है द्रौपदी की श्री कृष्ण की रानियों से भेंट। तो इसके तीसरे श्लोक को दोहराएंगे, कृपया आप सब इसको दोहराइए। कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजासभम् महन्मनस्तो मुखानि श्रुतं क्वचे पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहं हृतां देहकृद स्मृतिच्छिदम् कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजासभम् महन् मनस्तो मुखनिसृतं क्वचे पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहं भृतां देहकृद स्मृतिच्छिदम् कुतो शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवम् शिवं त्वच्चरणाम्बुजासवम् महं मनस्तो मुखनीसृतं क्वचे पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो देहं भृतां देहकृद स्मृतिच्छिदम् चरणाम्बुजात्तवम् मुखनीसृतं क्वचेत् पिबन्ति ये कर्णपुटैरलं प्रभो शब्दार्थ इस प्रकार से है, कुतः कहां से, अशिवम अशुभ, त्वत आपके, चरण चरणों के, अंबुज कमलवत, आसवम मदोन्मत्कारी अमृत को, महत महात्माओं के, मनस्तः मनो के, मुख उनके मुख से होकर, निःसृतम निकला हुआ, क्वचित किसी समय, पिबन्ति पीते हैं, ये जो कर्ण उनके कानों के, पुटे है प्यालों से, अलम इच्छानुसार, प्रभो हे प्रभु, देहम भौतिक शरीर, धृताम धारण करने वालों के लिए, देह देहों के, कृत सृष्टा के विषय में, अस्मृति विस्मरण के, छिदम उच्छेदक। अनुवाद इस प्रकार से है, भगवान कृष्ण के संबंधियों ने कहा, हे प्रभु, उन लोगों का अमंगल कैसे हो सकता है जिन्होंने आपके चरण कमलों से निकले अमृत का छक्कर पान किया हो। यह मदोन्मत्तकारी तरल बड़े बड़े भक्तों के मनों से बहता हुआ उनके मुखों से निकलकर उनके कान रूपी प्यालों में उड़ेला जाता है। यह देहधारी जीवात्मा द्वारा अपने शरीर के बनाने वाले के प्रति विस्मृति को विनष्ट करता है। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सर्वशास्त्राभिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राणः श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्ते मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्ते असाधु साधु तदाइन अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्माम् प्रेम्नारत्कंठयोसुरा हरे कृष्णा ये अध्याय है पिछले अध्याय में चर्चा हुई कि सब कुरुक्षेत्र में आए हैं सारे यदुवंशी आए अन्य लोग आए नंद बाबा आए ब्रजवासी आए श्री कृष्ण सबसे मिल रहे हैं और अब जब ब्रजवासियों से श्री कृष्ण मिल चुके तब वे अन्य राजाओं की तरफ आए युधिष्ठिर आदि युधिष्ठिर से मिले और श्री कृष्ण ने उनकी कुशल क्षेम पूछी। युधिष्ठिर महाराज यहाँ जो श्लोक हमने पढ़ा तो इसमें वे उत्तर दे रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं जैसे ही श्री कृष्ण ने पूछा कि आप सब कैसे हैं सब कुछ ठीक ठाक है कोई कष्ट तो नहीं है तो ये सुनते ही युधिष्ठिर महाराज इसको कहते हैं श्लोक को कि जिसने आपके चरण कमलों का आश्रय लिया हो उसके लिए क्या क्लेश हो सकता है क्या दुख हो सकता है उसके लिए। वैसे तो भगवान को पूछना ही नहीं चाहिए था कि आप कैसे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत सारा धन दे कि ये लो तुम्हारे पास सारा धन, और फिर उसको पूछे कि पैसा है ना तुम्हारे पास, तो कैसा लगेगा? जब आपने ही हमें इतना धन दे दिया है और आप हमसे पूछ रहे हैं कि पैसा है ना तुम्हारे पास, गरीबी तो नहीं है। इसी तरह श्री कृष्ण जब पूछ रहे हैं अपने भक्तों से कि सब ठीक है ना, तो युधिष्ठिर महाराज के मन का भाव यही है कि ठीक तो सब आप ही कर रहे हैं, आप हमारी रक्षा कर रहे हैं, और फिर आप पूछ रहे हैं कि सब ठीक है कि नहीं। इसीलिए वो कहते हैं कि आपके चरणों का आश्रय जिसने ले लिया उसके लिए कौन सा अशुभ चीज हो सकती है। उसके कानों में वो रस वो अमृत पड़ता है जो महान भक्तों के हृदय से निकलता है, फिर उनके मुख से हृदय में उसका मनन होता है, फिर उसके मुख से उनके मुख से निकलकर ऐसे लोगों के कानों में पड़ता है जिन पर आपकी कृपा है, और फिर उनके हृदय में प्रवेश करके उनके हृदय को शुद्ध करता है। तो शुद्ध भक्तों के हृदय से निकली हुई वाणी या उनके मुख से निकली हुई वाणी ये जीव को शुद्ध कर सकती है, और यही परंपरा है। क्यों परंपरा का पालन किया जाता है? इसलिए नहीं कि हमें कुछ शब्द चाहिए, हमें कुछ श्लोक बोलने का मार्ग चाहिए, हमें कुछ क्लास देने का तरीका चाहिए। परंपरा का पालन इसलिए किया जाता है क्योंकि परंपरा का अर्थ यही है, जो भगवान के बड़े निकट हैं, जिन पर भगवान की विशेष कृपा है, जिनको भगवान बहुत प्रेम करते हैं, महाजनो येन गतः स पंथा, उनके पथ पर चलना परंपरा कहलाता है। उन महाजनों के हृदय में क्या है? धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहाया, उनके हृदय में धर्म के तत्व हैं, और उनके हृदय में उन धर्म के तत्वों का मनन होकर फिर जो उनके मुख से निकलता है शुक मुखाद अमृतम, फिर जो उनके मुख से निकलता है वो अमृत होता है। कौन सा अमृत होता है? इस जगत में हमारे जीवन को बढ़ाने वाला अमृत नहीं, वो अमृत होता है जो हमें हमारी मृत अवस्था से, इस मृत जगत से अमृतत्व की ओर ले जाता है। मृत्योर मां अमृतंगमया, उस अमृत का पान होता है जब हमारे कानों से, तो ये महान परंपरा से निकला हुआ फिर कानों में जाता है, उनके हृदय को शुद्ध करता है, और फिर उनके हृदय में क्या होता है? जब हमने सुना हमारे कान से तो हमारे हृदय में क्या होता है? हृदय में हमें शास्त्र का ज्ञान प्रकट होता है। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ तस्येत कथितम अर्थम प्रकाशन्ते महात्मनः। तो क्योंकि उन्होंने उस परंपरा से सुना हमने, इसीलिए हमारे कानों से जब वो शब्द प्रवेश करते हैं, हृदय में जाते हैं, प्रकाशन्ते महात्मनः, ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और फिर हम उस ज्ञान को लेकर क्या करते हैं? क्या हम उस ज्ञान को, उस प्रकाश को लेकर सो जाते हैं? क्या हम उस प्रकाश को लेकर अपने ही जगत में आनंदित हो जाते हैं? नहीं, हम उस प्रकाश को लेकर, प्रकाशन्ते महात्मना, उसको लेकर फिर अन्य लोगों में उसको वितरित करते हैं। मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो ये परंपरा है कि जब आचार्यों से सुने, अन्य भक्तों को उसका प्रचार करें, अन्य भक्तों के साथ चर्चा करें, और यही आज के अध्याय का विषय है, चर्चा, कृष्ण की चर्चा। इसका शीर्षक है द्रौपदी कृष्ण की ईरानियों से मिल रही हैं, और मिलकर क्या कर रही हैं? मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयन्तः परस्परम, कृष्ण के विषय में चर्चा कर रही है। तो कैसे मच्चित्ता मतगत प्राणा क्या होता है, क्यों वर्णन किया जा रहा है इस अध्याय में? अगर हम साधारण दृष्टि से देखें, आचार्यों की दृष्टि से नहीं, तो इस अध्याय में कुछ है नहीं। द्रौपदी पूछ रही है जाकर कृष्ण की पत्नी को, भाई कैसे, क्या हुआ था तुम्हारी शादी में? तो वो बता रही हैं ऐसे हुआ मेरी शादी में, ये सब सुनने की क्या जरूरत है। वैरागी लोग हैं सुखदेव गोस्वामी, वैरागी आदमी ये शादियों का वर्णन ही करे जा रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं फिर से कर रहे हैं। ये 8 शादियों का वर्णन हो चुका है, 8 ही नहीं 16,100 का, फिर से वही, क्या जरूरत है। ये छोड़ देते ये अध्याय को सुखदेव गोस्वामी, कुछ और कह देते, कुछ कुछ गूही ज्ञान कह देते, को बहुत बड़ा सिद्धांत दे देते। ये गूही ज्ञान ही दे रहे हैं, ये वो बता रहे हैं कि जो मुक्त आत्माएं हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनके कार्य क्या हैं, वो जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं। तो इससे हमें सीख लेनी चाहिए, क्या सीखना चाहिए कि जब भगवान के शुद्ध भक्त आपस में मिलते हैं, जैसे द्रौपदी और रानियां श्री कृष्ण की, तो क्या होता है, कृष्ण की चर्चा, भले दिखने में बाहरी चर्चा है, कैसे विवाह हुआ तुम्हारा। रानियों ने द्रौपदी से नहीं पूछा तुम्हारा विवाह कैसे हुआ, द्रौपदी ने पूछा क्यों, चर्चा कृष्ण की होगी, विवाह किससे हुआ है, कृष्ण से हुआ, तो इसलिए द्रौपदी ने पूछा। तो दिखने में साधारण है, तो ये शुद्ध भक्तों की चर्चाएं हैं, कृष्ण की चर्चा, सीधे कृष्ण की चर्चा, मुक्त आत्माओं की चर्चा। एक है शुद्ध भक्त गोपियां, ये रानियां इत्यादि, इनको तो कृष्ण के अलावा और कुछ है ही नहीं। फिर है मुक्त आत्माएं, उनकी चर्चाएं क्या हैं, मुक्त आत्माओं की चर्चा भी यही है, कृष्ण का विषय, भगवान का विषय, अवतारों का विषय, ये मुक्त आत्माओं की चर्चा है। जैसे जब विदुर मैत्रेय मुनि से मिलते हैं तो वो यही पूछते हैं कि हमें बताइए, मनो न तृप्यति शृण्वताम नाम सुश्लोक मौलेश्वरी ताम्रतानी, यही चीज ऋषियों ने कही, यही विदुर जी कह रहे हैं कि मुझे बताइए अवतार भेदे, अलग अलग अवतारों का वर्णन कीजिए। तो जो शुद्ध भक्त हैं कृष्ण के, वो कृष्ण के अलावा और कुछ सुनते ही नहीं है। मुक्त आत्माएं कृष्ण और उनके विस्तारों का वर्णन भी सुनने में रुचि लेते हैं। और अब मान लीजिए कि हम लोग आज के समय में देखें, आज के समय के जो मुक्त आत्माएं हैं, शुद्ध जीव हैं, शुद्धिकरण की ओर बढ़ रहे हैं, मुमुक्षु भी हैं, तो उनका क्या कहना है, हमें कैसे रहना चाहिए। तो मान लीजिए जैसे हमारी संस्था में हम लोग चर्चा करें कि प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, जब वो दो शिष्य मिलते हैं तो क्या बात करते होंगे, क्या चर्चा होती होगी उन लोगों में। श्रील प्रभुपाद की चर्चा करते होंगे कि याद है प्रभुपाद ने ये कहा था, हाँ हाँ, लेकिन जब प्रभुपाद वहां थे तो ये ऐसे किया था उन्होंने, हाँ जब प्रभुपाद वहां थे तो ये कहते थे, ये उनकी चर्चा है। फिर वो लोग मिलते हैं जिन्होंने प्रभुपाद का संग नहीं किया साक्षात, तो उनकी चर्चा क्या होती है, उनकी चर्चा होती है कि ये जो प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ये कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में कितना आप योगदान दे रहे हैं, और फिर कैसे ये प्रभुपाद ने इतनी, हम सुन रहे हैं प्रभुपाद ने क्या क्या किया, तो वो चर्चाएं हैं। अब जिन लोगों को वो भी अवसर प्राप्त नहीं है कि वो कभी श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों के व्यक्तिगत संपर्क में नहीं आए, उनकी चर्चाएं क्या है, जय श्री गोनराज दयाल मिताई, उनकी चर्चाएं क्या हैं, श्रील प्रभुपाद ने भागवत में क्या लिखा, जैसे हम लोग चर्चाएं कर रहे हैं, क्या शब्द कहे, क्या प्रभुपाद ने समझाया, ये उनकी चर्चा है। मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको शास्त्र भी नहीं पढ़ना आता, प्रभुपाद के ग्रंथ नहीं पढ़ सकता, तो क्या वो चर्चा नहीं करता, नहीं, वो श्रील प्रभुपाद के द्वारा कही गई बात को दोहराते हैं, और नहीं दोहरा सकते तो केवल महामंत्र को दोहराते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज कृष्ण का गुणगान करते हैं कि आपसे निकलने वाला प्रकाश जीवों के तीन गुणों को नाश कर देता है और पूर्ण आनंद को प्रदान करता है। और अब आपका जो ज्ञान है वो समय से प्रभावित नहीं होता, किसी स्थान से किसी स्थिति से प्रभावित नहीं होता, आपका ज्ञान जैसा है, मतलब शास्त्र का वर्णन है, शास्त्र का ज्ञान किसी समय से प्रभावित नहीं होता कि हाँ उस समय पर शास्त्र ठीक थे, अब समय बदल गया है, अब शास्त्रों का कोई उपयोग नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं आपका ज्ञान कभी प्रभावित नहीं होता किसी भी चीज से, और इसीलिए वो कहते हैं कि सभी साधुओं के लिए, साधुओं में भी कौन, वो कहते हैं कि सभी सिद्ध साधुओं के लिए जो अपनी साधना सिद्ध कर चुके हैं उनके गंतव्य आप हैं, अर्थात जिन साधुओं ने जीवन का उद्देश्य समझ लिया है उन्होंने आपको अपना गंतव्य बनाया है। तो ऐसा गुणगान युधिष्ठिर महाराज करते हैं, और फिर वर्णन किया कि जब ये गुणगान हो रहा था तो द्रौपदी ने देखा श्री कृष्ण की रानियों को, सभी थी वहां पर 16,108 रानियां थी। तो फिर द्रौपदी गई और उन्होंने संबोधित किया हर एक जो प्रमुख रानी हैं, पटरानियां हैं उनको और फिर रानियों को। तो द्रौपदी ने कहा रुक्मिणी देवी से, हे रुक्मिणी देवी, हे सत्यभामा, हे जाम्बवती, हे कालिंदी, हे सत्या, हे भद्रा, हे लक्ष्मणा, हे रोहिणी, तो ऐसे उन्होंने अलग अलग उनको पुकारा और कहा कि बड़ी रुचि है मुझे सुनने में, बड़ी आतुरता है, मैं सुनना चाहती हूँ आप सबके विवाह के, थोड़ा थोड़ा सुना है हमने, लेकिन बताइए कि कैसे आप सबके विवाह हुए, क्या हुआ आपके विवाह में, कैसे कृष्ण ने आपसे विवाह किया। तो फिर सभी रानियां द्रौपदी को बताने लगी। अब देखिए यहां ऐसा नहीं है कि बड़ा कोई अहंकार की बात है कि आपसे पूछा जाए भाई बताओ कैसे हुआ तो हाँ शुरू हो गए कि ऐसे हुआ वैसे हुआ हमने ये किया, नहीं, ये सारा वर्णन कृष्ण के गुणगान के लिए कर रही है। उनको भी अवसर मिला कृष्ण के गुणगान का तो रुक्मिणी देवी ने करना शुरू किया। तो रुक्मिणी देवी कहती हैं ये विवाहों के वर्णन हम लोग पहले बहुत विस्तार से कर चुके हैं, इसलिए विवाहों के वर्णन नहीं, जो थोड़ा बहुत कहा गया है एक एक श्लोक में सब रानियों ने कहा। तो रुक्मिणी देवी ने कहा कि कैसे एक शेर की तरह गीदड़ों के बीच से भगवान श्री कृष्ण मुझे लेकर चले गए, वहां सब थे लेकिन श्री कृष्ण ने मेरा हरण किया, और फिर उन्होंने प्रार्थना की रुक्मिणी देवी ने कि मेरी प्रार्थना यही है कि मुझे हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा करने का अवसर प्राप्त हो। तो ये कहकर उन्होंने समाप्त किया। तो देखिए अगर वो कह भी रही हैं तो ये नहीं कह रही है कि देखा मैं कितनी महान हूं, मुझे लेने के लिए कृष्ण आए, हरण किया मेरा, नहीं, वो कह रही बस उनके चरण कमलों की आराधना मैं कर सकूं हर समय, यही मेरी आशा है। फिर सत्यभामा ने कहा कि मेरे पिता ने आरोप लगाया था कृष्ण पर, फिर जब कृष्ण ने उसको दूर कर दिया तो बड़ी ग्लानि हुई मेरे पिता को, हालांकि उन्होंने अन्यों से कह रखा था कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करूंगा, लेकिन वो सबको भूल कर उन्होंने मेरा विवाह श्री कृष्ण से कर दिया, ऐसे सत्यभामा ने कहा। जाम्बवती ने कहा कि मेरे पिता ये भूल गए कि जो सामने खड़े हैं उनके वो वही हैं श्री रामचंद्र उनके स्वामी, उनको स्मरण नहीं रहा, पहचान नहीं पाए, और इसीलिए 27 दिन तक युद्ध किया उन्होंने श्री कृष्ण से, और फिर अंत में उनको स्मरण हुआ कि तो वही कृष्ण है, वही राम है भगवान, और इसीलिए उन्होंने मेरा हाथ श्री कृष्ण के हाथ में दिया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि जब उन्होंने ये कहा तो वहां सारी उपस्थित जो रानियां थी और अन्य थी स्त्रियां, उन्होंने कहा अच्छा अच्छा आप ही हो वो, हमने सुना है रामायण में कि आपके पिता ने रामचंद्र जी को भी आपका हाथ दिया था, उन्होंने कहा था कि आप विवाह कर लीजिए लेकिन रामचंद्र जी ने मना कर दिया, कहा था कि मैंने तो एक पत्नी व्रत लिया है तो इसलिए उन्होंने किया नहीं, और अब जब श्री कृष्ण जिन्होंने एक पत्नी व्रत नहीं लिया तो फिर उनसे उनका विवाह हुआ, अच्छा आप ही हो, रामायण का हमने सुना हुआ है आपके बारे में, तो वो रामायण के समय से है जाम्बवती। अब जब पढ़ रहे थे तो हम सोच रहे थे कि इतने वृद्ध हो गई होंगी अब तक, तो श्री कृष्ण ने विवाह कैसे किया होगा, लेकिन श्री कृष्ण ने वैसे ही रखा था, ठीक है रामचंद्र जी ने कहा ऐसे ही रहना, अगली बार आऊंगा विवाह करूंगा। तो जाम्बवती ने ऐसे कहा कि मेरा विवाह हुआ, और जाम्बवती कहती है लेकिन मैं तो बस दासी हूं श्री कृष्ण की। उसके बाद कालिंदी ने कहा कि श्री कृष्ण जानते थे कि मैं तपस्या कर रही हूं उनको पाने के लिए, तो अपने मित्र के साथ आए, ये हमने सुना है अर्जुन के साथ गए थे, अपने मित्र के साथ आए और मुझसे उन्होंने फिर विवाह किया। लेकिन अब बहुत सुंदर बात कालिंदी देवी कहती हैं कि अब मैं उनके महल में एक झाड़ू लगाने वाली। देखिए, किसी को अहंकार नहीं, इतनी बड़ी रानियां हैं, कृष्ण की रानियां हैं, तो उनको ये अहंकार नहीं कि कृष्ण मेरे लिए आए। मैंने कहा अब तो मैं झाड़ू लगाती हूं उनके महल में, और वो भी मुझे अवसर मिला है, बहुत मेरा भाग्य है। कृष्ण मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, लेकिन दरअसल मैं तो, मुझे काम तो घर में उनके झाड़ू लगाने का मिल गया, यही बहुत है। तो ये क्यों वर्णन किए गए अलग अलग? कोई रानी कह रही है मैं दासी हूं, कोई कह रही है मैं बस झाड़ू लगाने वाली हूं, कोई कह रही है कि बस मुझे चरण कमलों की आराधना करने मिले। ये हम सबके लिए बताया जा रहा है क्या भाव होता है शुद्ध भक्त का। हमारा क्या भाव है? मैं बहुत बड़ा प्रेसिडेंट हूं। हमारा क्या भाव है? मैं जीबीसी हो गया हूं। हमारा क्या भाव है? मैं, इतने मेरे अनुयायी हैं, मेरा प्रवचन सुनने के लिए इतने लोग आते हैं, ये हमारा भाव है। क्यों? क्योंकि भक्ति नहीं है हृदय। लेकिन जिनके हृदय भक्ति से भरे हैं उनका क्या भाव है? मैं झाड़ू लगाने वाली हूं। अर्थात वो बता रही है, शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हैं कि भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना भी कितना महत्वपूर्ण है, ये भी शुद्ध भक्तों का काम। श्रील प्रभुपाद ने इसको कहा, श्रील प्रभुपाद ने जब मंदिर खोले, मंदिरों की स्थापना की, भक्तों को सौंप दिया, चले गए, तो प्रभुपाद ने उनको लिखा कि दरअसल आप जो कर रहे हो मेरी सेवा है। मतलब मुझे भगवान का मंदिर पर झाड़ू लगानी चाहिए, मुझे भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, मुझे भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, इसीलिए आप लोग कर रहे हो मेरी तरफ से। अर्थात हर शिष्य को ये जानना चाहिए कि हम जब मंदिर में सेवा करते हैं तो हम गुरु के प्रतिनिधि के रूप में कर रहे हैं। सेवा गुरु की है, हमारी नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते सेवा कृष्ण की, ये सेवा गुरु की है। लेकिन गुरु नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वे बहुत जगह पर हैं, तो इसीलिए जैसे श्री कृष्ण विस्तार कर लेते हैं अपना, अपनी शक्तियों के रूप में, ऐसे ही एक प्रामाणिक गुरु विस्तार करते हैं अपना शिष्यों के रूप में। और विस्तार किस लिए करते हैं? कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए एक प्रामाणिक गुरु बहुत अधिक शिष्य नहीं बनाना चाहता। श्रील प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में, ये बहुत पहले का प्रवचन है, जब प्रभुपाद गए थे अमेरिका, और उस समय उनका बड़ा विरोध भी हो रहा था, वो जहां रहते थे, जिनके स्टूडियो में वो प्रवचन देते थे, वो मायावादी थे, वो ज्यादा बोलने नहीं देते थे। तो ऐसे समय में एक प्रवचन में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि मुझे कई लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप ये सब मत बोलिए, नहीं तो आपको ज्यादा अनुयायी नहीं मिलेंगे। प्रभुपाद ने कहा मुझे कोई चिंता नहीं, अनुयायी नहीं मिले तो, लेकिन मैं जो है वो कहने वाला, मुझे कोई चिंता नहीं। तो ये शुद्ध भक्त, तो एक प्रामाणिक गुरु इसलिए शिष्य नहीं बनाते कि उनको बड़ा अपना वर्चस्व जमाना है। वो अधिक से अधिक अगर शिष्य बना भी रहे हैं तो केवल इसलिए ताकि कृष्ण की सेवा बढ़ सके, फैल सके कृष्ण की सेवा। तो हर शिष्य को ये ज्ञान होना चाहिए, ये याद रखना चाहिए कि हम गुरु के प्रतिनिधि हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं, इसलिए हर सेवा बहुत ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि ये सेवा गुरु की है, हम कर रहे हैं। तो यही चीजें यहां वो दिखला रही कि कैसा भाव होना चाहिए हमारा। तो फिर आगे मित्र विंदा कहती हैं कि कैसे स्वयंवर हुआ, स्वयंवर रचा गया था, मना कर दिया था कृष्ण को नहीं चुनना है, और कृष्ण आकर मुझे उठाकर ले गए सबके बीच से। और वो भी प्रार्थना करती हैं कि बस मेरी एक ही प्रार्थना है कि हर जीवन में, जन्म के बाद, जन्म जन्मांतर तक मुझे श्री कृष्ण के चरण धोने की सेवा मिलती रहे। देखिए ये भाव है भक्तों का, ये शुद्ध भक्ति है। हम कामना नहीं करें कि हम इस जन्म में या अगले जन्म में और चार मंदिर के प्रेसिडेंट बन जाए, इसमें तो एक ही बन पाए, इसमें तो दो ही मंदिर बना पाया, अगले बार 10 बना दो। भावना क्या है? बनाए भगवान मुझसे 10, 15, 20, 50 मंदिर, 100 मंदिर बनवाए, लेकिन भावना क्या है? श्रील प्रभुपाद की क्या भावना थी? क्या उन्होंने कहा था मैं मंदिर बनाऊंगा, ये करूंगा? नहीं, उनकी भावना थी कृष्ण की सेवा। तो ये भाव है कि जन्म जन्मांतर तक मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे सुखी त्वयी, और इसकी वो कामना करती है। फिर सत्या कहती है
कि मेरे पिता ने एक शर्त रखी थी, 7 बैलों को एक साथ नकेल डालना है, नाक में वो रस्सी डालना है। तो श्री कृष्ण ने अपना विस्तार करके बड़ी आसानी से कर दिया। और वो भी यही कहती हैं कि जन्म जन्मांतर तक मैं कृष्ण की सेवा में लगी रहूं। और फिर भद्रा, तो भद्रा ने कहा कि मेरे विवाह में ऐसा कुछ नहीं हुआ, न स्वयंवर था, न झगड़ा हुआ, ना कोई युद्ध हुआ, मेरे माता पिता ने खुद कृष्ण को दे दिया। हमने सुना है कि उनकी माता कृष्ण की बुआ थी, वसुदेव जी की बहन, तो उन्होंने स्वयं ही कि ठीक है कृष्ण से विवाह कर लो। शायद एक ही विवाह था जिसमें युद्ध नहीं हुआ। और फिर वो कामना करते हैं कि मुझे बस कृष्ण के चरणों का स्पर्श करने का अवसर मिले जन्म जन्मांतर तक। तो ऐसे 7 रानियों ने वर्णन कर दिया। अब लक्ष्मणा जो सबसे छोटी हैं, उन्होंने वर्णन शुरू किया और लक्ष्मणा ने विस्तार से वर्णन किया। बाकी रानियों ने बस ऐसे हुआ जरा सा, लेकिन लक्ष्मणा जब उनको स्मरण हुआ उस विवाह का, फिर उनको स्मरण हुआ कैसे कृष्ण ने क्या क्या किया, तो वो थोड़ा सा बह गई कृष्ण कथा में, कृष्ण के लीला में, कृष्ण के गुणगान में वो बह गई। वो भूल गई कि वो कहाँ खड़ी हैं, उनसे बड़ी रानियां सब हैं। और उन्होंने बड़े विस्तार से वर्णन किया लक्ष्मणा ने अपने विवाह का, या कहना चाहिए कि पहले लक्ष्मणा के विवाह का विस्तार से वर्णन नहीं है, छोटा सा वर्णन किया गया, और अब लक्ष्मणा के विवाह का विस्तार से वर्णन किया। तो लक्ष्मणा लक्ष्मणा अब वर्णन शुरू करती हैं। तो इस अध्याय के 17वें श्लोक से 39वें श्लोक तक लक्ष्मणा का वर्णन है। इससे पहले द्रौपदी ने पूछा और रानियों ने उत्तर दिया। तो लक्ष्मणा विवाह का बहुत सुंदर वर्णन करती हैं। लक्ष्मणा कहती हैं कि मैंने नारद मुनि से सुना था, बार बार नारद मुनि आते थे और मुझे भगवान के विषय में सुनाते रहते थे, कृष्ण की लीलाओं के, अब कृष्ण ये कर रहे हैं, कृष्ण ने ये किया। देखिए नारद सारी व्यवस्था कर रहे थे, जानते थे कि इनका विवाह होना है तो तैयार कर रहे थे, तो आके सुनाते थे। तो उन्होंने कहा नारद से मैंने सुना और अपने हृदय में मैंने उनको ही अपना पति स्वीकार कर लिया, श्री कृष्ण को हृदय से। ठीक है मैं उनसे मिल नहीं सकी, मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन सुना और हृदय में ही उनको स्वीकार कर लिया कि इनके अलावा और कोई मेरे पति नहीं है। और फिर क्यों स्वीकार कर लिया, तो उन्होंने कहा कि ये कृष्ण तो वो हैं जिनको लक्ष्मी देवी ने भी सारे देवताओं को नकारते हुए स्वीकार किया था। तो ये उस समय की बात कर रही हैं जब समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी प्रकट हुई समुद्र से और उस मंथन से, और लक्ष्मी देवी ने सबकी ओर देखा, अच्छा ये लेकिन देखा कि किसी को अहंकार है, किसी को ये है, सब देखा, एक ही व्यक्ति है जिसमें कोई दोष नहीं है और वो हैं श्री कृष्ण। भगवान उस समय खड़े थे अजीत के रूप में। तो वे कहती हैं लक्ष्मणा कि मैंने उनको स्वीकार किया, लक्ष्मी देवी तक ने उनको स्वीकार किया है, सबको त्याग कर, सारे देवताओं को त्याग कर। तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पिता थे बृहत्सेन, तो मेरे जो पिता थे वो मुझसे बहुत प्रेम करते थे, तो उनको मेरे हृदय की बात समझ में आ गई कि कृष्ण से विवाह करना चाहती है, लेकिन वो सीधे कृष्ण को देना नहीं चाहते थे कि बहुत सारे और विरोधी खड़े हो जाएंगे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, एक स्वयंवर रचा। तो वो द्रौपदी को कहती हैं लक्ष्मणा कि जैसे तुम्हारे स्वयंवर में एक ऊपर मछली टांगी गई थी और उसके प्रतिबिंब को देखकर उसको भेदना था, ऐसे ही मेरे स्वयंवर में भी हुआ। तो मेरे पिता ने एक ऐसा स्वयंवर रचा ये सोच कर कि श्री कृष्ण उसको भेद लेंगे। तो क्या था, ऊपर मछली घूम रही थी, नीचे प्रतिबिंब देखना था, तो फिर ऐसा लगा कि ये तो वैसे ही था जैसे द्रौपदी में है। तो उन्होंने बताया नहीं नहीं आपके में था, लेकिन आपके में पहले चीज मछली बहुत तेज नहीं घूम रही थी, ये मछली बड़ी तेज घूम रही थी, और दूसरा आपके में जो मछली थी वो बंद नहीं थी, ये सब तरफ से बंद थी, जरा सा दिखती थी और बस उतने में मारना था, आपके में वो मछली दिख रही थी तो नीचे देखकर मार सकते थे, मतलब एक बार ऊपर देखा और फिर मछली है और फिर नीचे प्रतिबिंब देखकर मार सकते हैं। लेकिन यहां क्या था, यहां बड़ा कठिन शर्त रखी गई थी मछली दिखती नहीं थी, ढूंढना पड़ता था, ऐसा नहीं कि नीचे दिख रही है, वो बंद गायब थी, तो बड़े ध्यान से ऊपर देखना था और जैसे ही दिख जाए उसी समय नीचे देखकर मारना। मतलब ऐसा नहीं था कि ऊपर देख लिया और फिर जब तक नीचे देखा तब तक तो मछली गायब हो जाती थी उधर से, तो एक ही समय में ऊपर भी देखना है और नीचे भी देखना और तब चलाना है, और ये केवल कृष्ण कर सकते हैं। ये कुछ साधारण मनुष्य कर ही नहीं सकता, ये केवल भगवान कर सकते हैं कि एक ही समय में ऊपर भी देख रहे हैं नीचे भी देख रहे हैं। तो उन्होंने कहा ये शर्त रखी गई थी ये सोच कर कि कृष्ण से विवाह होगा। तो उन्होंने कहा बड़े लोग आए, बहुत स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए और सबका सम्मान किया। मेरे पिता ने आइए आइए, मतलब हम ये सोच रहे थे कि उनके पिताजी ऐसे सम्मान कर रहे होंगे राजा बृहद सेन, ये सोचकर आओ आओ अभी थोड़े समय में जाना है, आप तो कुछ कर नहीं पाओगे, फिर भी सम्मान कर रहे हैं। तो राजाओं का सम्मान किया, राजा आए सब बैठे। तो वो कहते हैं कि कई लोगों ने तो ये सुनकर कि क्या शर्त है ट्राई नहीं किया, बोले कोई फायदा नहीं है जाकर कहां से होगा, ऊपर भी देखो नीचे भी देखो। और कुछ लोगों ने प्रयास किया, तो बोले कि जिन्होंने प्रयास किया उनमें क्या हुआ, उनमें कुछ लोग आए और उन्होंने धनुष उठाने का प्रयास किया, वो धनुष नहीं उठा पाए। कुछ लोग धनुष उठा लिया लेकिन जब उन्होंने वो प्रत्यंचा को चढ़ाने का प्रयास किया कि इसको ऐसे खींच कर नीचे बांधा जाता है धनुष में, तो जब वो ऐसे ऊपर से खींच कर बांधने लगे उनसे बंधा ही नहीं और वो छूट गया, और छूटने के बाद वो जो धनुष था वो ऐसे उनके ऊपर आया कि वो जोर से जाकर गिरे धड़ाम, वो कर ही नहीं पाए। तो बोले ऐसे कुछ लोग ऐसे गिर गए। अच्छा, उन्होंने कहा कुछ लोग थे जो बड़े शक्तिशाली थे जो प्रत्यंचा चढ़ा पाए लेकिन वो तीर चला नहीं पाए। फिर उन्होंने कहा लेकिन कुछ महान लोग थे, और नाम लिया उन्होंने कौन महान लोग थे, तो कहते हैं जैसे जरासंध थे, शिशुपाल थे, भीम थे, दुर्योधन थे, कर्ण थे, ये सब आए थे लक्ष्मणा के विवाह करने के लिए लक्ष्मणा से। तो भीम थे, दुर्योधन थे, कर्ण थे, ये सब आए थे। तो इन्होंने प्रत्यंचा भी चढ़ा ली, तीर भी चला लिया, चढ़ा दिया, लेकिन ये लोग लक्ष्य को देख ही नहीं पाए। शक्तिशाली हैं, आचार्यगण समझाते हैं कि शक्तिशाली थे लेकिन कौशल नहीं था, बल और कौशल दोनों चाहिए, तो कौशल नहीं था। तो ये लोग आए लेकिन देख ही नहीं पाए, तो फिर सब रह गए ऐसे। तो सोचिए कर्ण, दुर्योधन, भीम, जरासंध, शिशुपाल, हमने जब शिशुपाल का नाम सुना तो कि सुधरा नहीं शिशुपाल, वहां पर मात खाई थी कृष्ण से रुक्मिणी के स्वयंवर में, फिर से आ गए यहाँ। तो इन सब ने प्रयास कर लिया, नहीं हुआ कुछ भी। तो फिर अर्जुन ने भी ट्राई किया, हाँ अर्जुन ने भी ट्राई किया लक्ष्मणा का, देखिए लक्ष्मण कहती फिर अर्जुन आए। तो अर्जुन को क्यों अलग रखा गया, इन सबके साथ नाम क्यों नहीं लिया, क्योंकि इन सब ने लक्ष्य को देखा ही नहीं, लेकिन अर्जुन आए वो लक्ष्य को देख लिया उन्होंने। तो अर्जुन ने प्रत्यंचा भी चढ़ा ली, अर्जुन ने लक्ष्य भी देख लिया, और अर्जुन ने तीर चलाया लेकिन वो केवल मछली को स्पर्श करके निकल गया तीर। शर्त ये थी कि घुसना चाहिए लक्ष्मी, जो मछली है उसको मारकर नीचे गिरनी चाहिए। तो अर्जुन ने भी प्रयास किया और स्पर्श करके निकल गया, अर्जुन का भी वर्णन किया गया। तो आश्चर्य होता है, आचार्यगण समझाते हैं ऐसे कैसे इतना बड़ा धनुर्धर अर्जुन और वो नहीं कर पाया। तो एक आचार्य समझाते हैं कि इसके लिए बल और कौशल दोनों चाहिए था। तो जो बल जरासंध, दुर्योधन, भीम इत्यादि में था वो बल अर्जुन में नहीं था, कौशल था, इसलिए वो देख पाया, वो लोग देख नहीं पाए, ये देख पाया, कौशल था लेकिन वो बल नहीं था, दोनों चाहिए था बल और कौशल। या दूसरे शब्दों में अगर हम लोग समझने का प्रयास करें तो कृष्ण हरेक के हृदय में परमात्मा के रूप में है, अर्जुन के हृदय में भी है। तो जब अर्जुन गए होंगे चलाने के लिए, कृष्ण ने कहा होगा क्या कर रहे हो, लेकिन अर्जुन ने कहा लेकिन मैं बड़ा धनुर्धर हूं, अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा नाम खराब हो जाएगा। ये भी सही है, दोनों चीजें है ना, कृष्ण को दोनों संभालना था कि वो तीर चला भी नहीं पाए, नहीं तो लक्ष्मण से विवाह हो जाएगा, और अगर बिल्कुल ही नहीं किया तो नाम खराब हो जाएगा अर्जुन का, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं चला पाए, द्रौपदी को जीत लिया था, पहले हुआ था द्रौपदी का, लक्ष्मणा का बाद में हुआ, तो द्रौपदी को जीत लिए यहां क्यों नहीं? तो इसलिए भगवान ने योजना की, ठीक है चला लो स्पर्श करके निकल जाए, तुम्हारा भी मान बना रहे और मेरी भी योजना सही रहे। तो अर्जुन भी फेल हो गए लक्ष्मणा के विवाह में, स्वयंवर में। और फिर लक्ष्मणा कहती हैं कि जब ऐसा हो गया तब श्री कृष्ण उठे और बड़े आराम से, लक्ष्मणा वर्णन करती बड़े आराम से आए, बड़े आराम से उन्होंने ये जो इतने लोग जो चढ़ा भी नहीं पा रहे थे, जो गिर गए थे चढ़ाते चढ़ाते, प्रत्यंचा चढ़ाई, तीर चढ़ाया उस पर, धनुष पर तीर लगाया और बड़ी आसानी से श्री कृष्ण ने केवल एक ही बार में, ऐसा नहीं कि जरा देख रहे थे अच्छा कहां, अरे ये आया, अरे ये आया, ऐसे नहीं, बड़ी आसानी से वो कहती है कि उन्होंने तीर चलाया, एक ही बार एक तीर चलाया, वो मछली नीचे आकर गिर गई सबके सामने। कहां थी पहले तो दिखे नहीं रही थी मछली, और श्री कृष्ण ने उसको मछली को नीचे गिरा दिया। तो उन्होंने कहा जब ये हुआ तो सभी जो वहां पर उपस्थित जो लोग थे वो जय जयकार कर उठे, जय जय, बहुत प्रसन्न हो गए सारे और वाद्य बजने लगे, देवता ऊपर से पुष्प की वृष्टि करने लगे। और फिर उन्होंने कहा विवाह कैसे हो? देखिए लक्ष्मण, हमने कहा ना कि वो बह गई हैं उस कृष्ण लीला में, तो विस्तार से वर्णन कर रही हैं, हालांकि बाकी रानियों ने नहीं किया, तो अब वो कर रही हैं कि फिर मैं धीरे धीरे चलकर आ रही थी, मेरे जो पांव में नुपुर थी उसकी आवाज हो रही थी, अर्थात जब मैं आ रही थी सब शांत हो गया, क्योंकि नहीं तो नुपुर की आवाज कहां से सुनाई देगी। तो कह रहे हैं कि नुपुर की आवाज मतलब केवल वही आवाज हो रही थी, कोई चलकर आ रही है छन छन छन, बस वही आवाज हो रही है और सारे शांत है, सब देख रहे हैं कि लक्ष्मणा कृष्ण की ओर बढ़ रही हैं। और वो कह रही है उस समय मेरे हाथ में, वो वर्णन भी कर रही हैं कि उस समय मैंने सिल्क के कपड़े पहने हुए थे, नए कपड़े वस्त्र धारण किए थे और बहुत अच्छे आभूषण पहने हुए थे, ये सारा वो वर्णन करती हैं। और फिर वो कहती है कि मेरे हाथ में जो वरमाला थी वो कैसी थी, सोने से और रत्नों से बनी हुई, फूलों की वरमाला नहीं थी। आजकल तो विवाह में वो कम होते जा रहे, पहले अच्छी हुआ करती थी वरमाला, आजकल तो जो मिल जाए वो ले आते हैं। तो सोने और रत्नों की बनी हुई वरमाला वो हाथ में लेकर जा रही थी। और वो कहती हैं कि ऐसे मैं श्री कृष्ण के पास पहुंची और मैंने पहले, उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी नजर उठाई, क्योंकि अब तक नजरें झुकी हुई थी, नजर उठाई तो मेरा जो चेहरा था मेरे नजर के आगे, मेरी आंखों के आगे मेरे बालों की लटे आ रही थी, तो वो उसके उससे मैंने जब नजरें उठाई तो मैंने सारे राजाओं को देखा, मुस्कुरा रही थी मैं और मुस्कुराते हुए मैंने सारे राजाओं को देखा। लक्ष्मणा वर्णन करती है क्यों देखा राजाओं को, क्या जरूरत थी, श्री कृष्ण को देखना था बस, मानो वो राजाओं को संदेश दे रही हूं, हो गया तुझसे कुछ नहीं होने वाला, मैं श्री कृष्ण के लिए बनी हूं। तो फिर और वो फिर कहती हैं कि मैंने बहुत बहुत मेरे अंदर लज्जा हो रही थी कैसे मैं श्री कृष्ण को ये हार डालूं, और बहुत शर्माते हुए मुख पर मेरे बहुत मुस्कान थी और मैंने श्री कृष्ण को वो हार अर्पण किया डाला। और वो कहती जैसे ही ये किया, अब तक सब शांत था, सब लोग देख रहे थे, कोई आवाज नहीं, जैसे ही उन्होंने हार डाला वो कहती अचानक नगाड़े बज गए, शंख बज उठा, मृदंग बज गए, धुंधुबियां बजने लगी और सब नृत्य करने लगे, पुरुष और स्त्रियां सब नृत्य करने लगे। तो ऐसा उनका विवाह का वर्णन किया। लेकिन वो कहती है कि वहां उपस्थित जितने राजा जो पराजित हो गए थे उनको क्रोध आ गया। आचार्यगण चर्चा करते, क्रोध आने का क्या जरूरत है, हार चुके हो ना, तुमको अवसर मिला था, तुमने कुछ किया नहीं, तो अब क्यों क्रोध आना, कोई गलत तो नहीं किया श्री कृष्ण ने, तो उनको क्रोध आ गया और क्रोध में उन्होंने कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण कहते हैं कि वो सब कृष्ण को आक्रमण करने के लिए भागे, और क्यों, वो एक शब्द का इस्तेमाल करती, क्योंकि उनका हृदय काम से भरा हुआ था। आचार्य गंडी यही समझाते कि हालांकि कृष्ण ने नियम से लक्ष्मणा को प्राप्त किया था सबको अवसर देने के बाद, लेकिन फिर भी उन्होंने आक्रमण क्यों किया, हृदय में काम भरा हुआ था, तो काम वासना से भरे थे इसीलिए उन्होंने आक्रमण कर दिया। तो जब आक्रमण कर दिया सबने, भगवान अपने रथ पर चार घोड़ों से जुते हुए रथ पर तुरंत सवार हो गए, लक्ष्मणा को लिया और उन्होंने रथ पर बिठा लिया। दारुक तैयार हो गए रथ को लेकर जाने के लिए, और उस समय लक्ष्मणा बहुत घबराई हुई थी, डर गई थी, इतने सारे राजा अचानक आक्रमण कर रहे हैं, हाहाकार कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, तो बिचारी घबरा गई, उसने आंखें बंद कर ली। तो श्री कृष्ण ने देखा एक तरफ मुझे युद्ध करना है, उनको सारंग धनुष उठाना था, और दूसरी तरफ इसको सांत्वना देनी है। तो वो कहती है कि श्री कृष्ण ने चतुर्भुज प्रकट किया, चार, अभी तक दो भुजाएं थी, अब चार भुजाएं कर ली, दो भुजाओं से आलिंगन किया, लक्ष्मणा को सांत्वना दी, चिंता मत करो मैं हूं, और बाकी दो भुजाओं से धनुष और बाण उठा लिया श्री कृष्ण ने। देखिए कितना सुंदर दृश्य है कि ऐसे समय में भी, युद्ध के समय जब उनको युद्ध करना है, श्री कृष्ण को चिंता है अपने भक्त की, अरे उसको डर लग रहा है, पहले उसको सांत्वना दो। कितनी सुंदर बात है, नहीं तो कोई युद्ध कर रहा है, वो युद्ध के समय थोड़ी सोचेगा, उल्टा डांटेगा, ये जनो चुप रहो, एक दूर रहो, मुझे युद्ध करने दो। लेकिन श्री कृष्ण है, भक्तों का इतना ध्यान रखते हैं, तो युद्ध हो रहा है, युद्ध करना है, सामने सब आक्रमण के लिए आ रहे, लेकिन उनकी चिंता क्या है, अरे डर रही है, इसको थोड़ा सांत्वना दे दी। तो दो हाथों से उसको आलिंगन कर उसको सांत्वना दे रहे हैं कि चिंता नहीं करो मैं हूं, और दो हाथों से युद्ध कर रहे हैं श्री कृष्ण। तो ऐसे उन्होंने जो दारुक था उनका रथ लेकर चल दिया, और ये सारे राजा पीछे पीछे आ रहे हैं। वो कहते हैं कि जैसे मानो जब एक शेर चलता है तो कुत्ते पीछे पीछे भागते तो सारे राजाओं की तुलना कुत्तों से कर दीजिए, कुत्ते की तरह भाग रहे पीछे और वो शेर की तरह आगे चल। और फिर कई राजाओं ने रास्ता रोक लिया, जाने नहीं देंगे, तीर चलाने लगे। तो फिर श्री कृष्ण ने युद्ध किया और कई राजा वहां पर गिर गए, कई के हाथ कटे, किसी के पैर कटे श्री कृष्ण के तीरों से, और ये देखकर कई राजा भाग गए, वो फिर रुक नहीं पाए। और ऐसे श्री कृष्ण मुझे लेकर द्वारका में आए, और द्वारका बड़ी सजी हुई थी, पताकाएं लगी हुई थी, बहुत अच्छे अच्छे ध्वज फैर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि फिर उसमें हमने प्रवेश किया, श्री कृष्ण ने ऐसे प्रवेश किया। और फिर उन्होंने कहा मेरे पिता ने बहुत दहेज दिया, सेविकाएं दी, रक्षक दिए, घोड़े दिए, हाथी दिए, रथ दिए, बहुत सारा कुछ दिया श्री कृष्ण को। और ये सब कहने के बाद अब वो उनको ध्यान आया मैं इतना क्यों बोल रही हूँ, और सारी रानियां देख रही हैं, सारी जो बड़ी बड़ी उनसे बड़ी हैं वो देख रही हैं। अच्छा, और उनको लगा रे मैंने ज्यादा बोल दिया। तो फिर वो तुरंत कहती हैं कि वैसे हम सब रानियां, अब वो आ गई, अपना भूल गई कि अपना अपना गुणगान भूल गई, हम सब रानियां श्री कृष्ण की दासियां हैं। अर्थात वो कह रही थी कि जो हम साधारण पत्नियों की तरह नहीं है, साधारण पत्नियां अपने पति को वश में कर लेती हैं, पता नहीं कैसे करती हैं, ये कह रही थी वो, लेकिन हम तो दासियां, हमने कोई हमारी शक्ति नहीं कि हम कृष्ण को वश में कर लें, हम तो बस दासियों की तरह रहती हैं। तो ऐसे उन्होंने कहा। और फिर रोहिणी कहने लगी, ये रोहिणी बलराम जी की माता रोहिणी नहीं है, ये 16,100 जो रानियों का विवाह हुआ था राजकुमारियों का, उनमें से एक हैं और उनकी प्रमुख मानी जाती हैं, इसीलिए जहां भी 16,100 रानियों का नाम आता है रोहिणी का नाम आता है। तो रोहिणी ने बताया कि कैसे भौमासुर का वध किया भगवान ने, और फिर हमने उनसे इच्छा प्रकट की, उन्होंने तो हमें मुक्त कर दिया था, फिर हमने सबने इच्छा प्रकट की, तो हमारे हृदय की इच्छा को जानकर श्री कृष्ण ने हमसे विवाह किया। तो ये वर्णन, जय श्री श्री गौ नटराज दयाल निताय की जय। तो ये वर्णन उन्होंने किया, और इन रानियों ने बहुत सुंदर बात कही, जैसे हर रानी कह रही थी हमारी क्या इच्छा है, इन रानियों ने बहुत सुंदर बात कही। इन रानियों को ब्रज का भाव या ब्रज जाने का अवसर नहीं मिला था, उद्धव से उन्होंने सुना था गोपियों के विषय में, ब्रज के विषय में, तो इसलिए बहुत सुंदर बात कहती हैं इस अध्याय के आखिरी दो तीन श्लोकों में। तो वो कहती हैं, नवयम साध्वि साम्राज्यम स्वराज्यम भोजम अभ्युत वैराज्यम पारमेष्ठयम आनंत्यम बहरे पदम। तो क्या कहती हैं, नवयम साध्वी हे साध्वी हे द्रौपदी, द्रौपदी को संबोधित करके कह रही हैं, नवयम हमें नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, साम्राज्यम, साम्राज्य मतलब ये पूरी पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पति बड़े पूरी पृथ्वी के साम्राज्य बने या हमें साम्राज्ञी कहलाया जाए, हमें पृथ्वी मिल जाए, नहीं चाहिए। अच्छा, साम्राज्य पृथ्वी का नहीं चाहिए तो स्वर्ग उन्होंने कहा स्वराज्यम, ये इंद्र का राज्य भी नहीं चाहिए, वो इंद्र के लिए ठीक है। हमें साम्राज्य पृथ्वी का राज्य नहीं चाहिए, स्वर्ग का राज्य नहीं चाहिए। तो फिर भौज्यम, भौज्यम मतलब भोग करने की असीम शक्ति, बहुत सारी सुविधा भोग करने की, का वो भी नहीं चाहिए। न पृथ्वी का राज्य चाहिए, न स्वर्ग का राज्य चाहिए, न बहुत सारी सुविधा चाहिए भोग करने की। तो फिर वैराज्यम, वैराज्यम मतलब बहुत सारी कोई योग शक्ति चाहिए, आठों सिद्धियां चाहिए, तो उन्होंने कहा सिद्धियां भी नहीं चाहिए। पारमेष्ठम, ब्रह्मा जी का राज्य चाहिए, ब्रह्मा जी का स्थान चाहिए, बोले वो ब्रह्मा जी का स्थान भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या है चाहिए? तो फिर भगवान के धाम जाना है तो वो कहती हैं आनत्यम वा हरे पदम, वो भी नहीं चाहिए। अरे हम लोग कब से सुनते आए हैं, वी वॉन्ट टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड, वापस जाना है, वापस जाना है। और यहां वो रानियां कह रही हैं हमें वो भी नहीं चाहिए, पृथ्वी भी नहीं, स्वर्ग भी नहीं, भोग की सुविधा नहीं, सिद्धियां नहीं, ब्रह्मा जी का स्थान नहीं, और तो और हमें भगवान का धाम भी नहीं चाहिए, वहां भी नहीं जाना। तो फिर क्या चाहिए आपको? तो वो फिर कहती हैं बहुत सुंदर कि हमारी इच्छा यही है श्री कृष्ण की चरण धूलि हमारे सर पर पड़े। क्यों, किस प्रकार पड़े, कैसे पड़े? तो वो अगले श्लोक में, अंतिम श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन करती हैं। क्यों कहती हैं कि हम भगवान कृष्ण के चरणों का वही स्पर्श चाहती हैं जो ब्रज गोपियों को मिला, जो ग्वाल बालों को मिला, जो वहां कुछ निम्न स्त्रियों को मिला, जो वहां की लताओं को मिला, जो वहां की घास की तिनकों को मिला, वो हमें चाहिए। तो क्यों ये भावना दे रही है? क्योंकि उद्धव जी ने उनको महत्व समझाया और उद्धव की भी कामना यही थी, आसा महो चरण रेन जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना। तो इसलिए वो प्रार्थना करती हैं कि बस हमें तो वो चरण धूलि मिल जाए और कोई हमारी इच्छा नहीं है। तो ऐसे सभी रानियों ने द्रौपदी को ये बताया कि कैसे उनका विवाह हुआ। अब अगले अध्याय में कल हम लोग चर्चा करेंगे, बड़ी सुंदर चर्चा है कि जब गोपियां इस तरह, ये रानी इस तरह बातें कर रही थी तो अचानक वहां पर बहुत सारे ऋषि मुनि आए और फिर भगवान और ऋषि मुनियों के बीच जो संवाद हुआ, इसको अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं? यस, हाँ, कैसे उन्होंने बाद में फिर माता के रूप में देखा होगा जिससे विवाह करना चाहते थे। सो वहां उपस्थित हर व्यक्ति या जो क्षत्रिय होते थे, वो जब विवाह करने जाते थे तो हर व्यक्ति काम से मोहित होकर नहीं जाते थे या उस स्त्री की सुंदरता के कारण नहीं जाते थे। कुछ लोग गए थे जो विरोध कर रहे हैं, जैसे वर्णन है कि जो काम से प्रेरित थे उन्होंने विरोध किया, लेकिन स्वाभाविक है अर्जुन ने विरोध नहीं किया होगा, भीम ने विरोध नहीं किया होगा। तो कुछ लोग जो जाते थे जैसे अर्जुन भीम इत्यादि, ये क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए जाते थे। जैसे जब स्वयंवर होता था तो सारे राजाओं को आमंत्रित किया जाता था, उन्होंने देखा भी नहीं होगा कौन है। तो ऐसा नहीं कि वो सुंदरता से, जैसे कुछ सुंदरता से जैसे शिशुपाल इत्यादि हैं, वो तो पहले से वो मेडिटेशन करके जाते, इसीलिए द्वेष हो गया कृष्ण से। लेकिन जो अन्य जाते थे क्योंकि क्षत्रिय को आमंत्रित किया गया, तो क्षत्रिय कुछ आमंत्रणों को मना नहीं कर सकते। जैसे इवन जुआ खेलने के लिए अगर मना बुलाया जाए तो मना नहीं कर सकता। कोई स्त्री अगर कहे उनसे कि मैं आपसे विवाह करना चाहती, क्षत्रिय मना नहीं कर सकता। युद्ध के लिए चुनौती दी जाए, क्षत्रिय मना नहीं कर सकता। और इसी तरह जब आमंत्रण दिया जाता था स्वयंवर के लिए तो क्षत्रिय मना नहीं कर सकते थे, इसलिए जाते थे, पहला कारण। दूसरा कारण था कि राज्यों के बीच में अच्छे संबंध इसलिए होते थे स्त्रियों के लिए नहीं, कि ताकि हमारा एक और प्रभाव बढ़ जाए, तो कल को युद्ध होगा तो ये हमारी तरफ से युद्ध करेंगे, इसलिए विवाह किए जाते थे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि भीष्म गए गांधारी से, उन्होंने कहा कि गांधारी विवाह करेंगी, हम धृतराष्ट्र के लिए चाहिए। तो ठीक है, उसमें कुछ ये नहीं हुआ कि धृतराष्ट्र को देखना है या क्यों, वो बात हो गई, विवाह निश्चित हो गया। तो ये राज्यों के बीच भी हुआ करता था, तो एक अन्य कारण था। तो इसलिए जब अर्जुन इत्यादि गए थे तो उन्होंने देखा नहीं था लक्ष्मणा को, और वे गए थे केवल आमंत्रण पर। और क्यों होता है कि आमंत्रण पर अगर नहीं जाएंगे तो जो उसकी और क्यों वो प्रयास करते थे जीतने का, क्षत्रिय की प्रतिष्ठा बनी रहनी चाहिए, क्षत्रिय के लिए प्रतिष्ठा बहुत जरूरी है। ब्राह्मण अब उसको निंदा कर लो, चुपचाप कहेगा उसको कुछ नहीं, क्षत्रिय निंदा नहीं सहन कर सकता। तो अगर अर्जुन के रहते कोई और जीत गया तो अर्जुन का नाम खराब हो जाएगा, या अर्जुन नहीं कर रहा है मतलब डर गया, तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी किया जाता था। तो इसलिए उन लोगों के लिए पहले तो इसलिए सरल होता था कि जब उनका विवाह किसी और से हो गया तो उसको मातृवत देखना। दूसरा, हम जिनकी बात कर रहे हैं ये लोग शास्त्रों में आत्मसंयम में बहुत ऊंचे बढ़े हुए हैं, आजकल के समय की तरह नहीं है कि व्यक्ति दूसरे की स्त्री को भी उस तरह से देखे। तो क्योंकि ये आत्मसंयम, जैसे अर्जुन स्वर्ग में अप्सरा वो आकर उनसे कह रही है और वो कह रहा है कि भाई आप तो मेरी माँ की तरह है, तो अगर हार भी जाते थे और नहीं कर पाते थे तो तुरंत भाव को बदलना उनके लिए बड़ा सरल होता था कि ठीक है अब हमारे नहीं है तो ठीक है उनको हम अच्छी तरह। तो ये आत्मसंयमी व्यक्ति के लक्षण है। ठीक है, हाँ जी, शुद्ध भक्तों से सुनना। हाँ निश्चित, हाँ प्रभुपाद इस बात को समझाते हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्त से सुनता है या श्री कृष्ण से सुनता है तो निश्चित उद्धार होगा, लेकिन श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त से सुनता है तो भी वही लाभ होगा। और अगर कोई उन्हीं शब्दों को दोहराता है शुद्ध भक्तों के, तब भी लाभ वही होगा, क्योंकि वो अपना कुछ उसमें मिलावट नहीं कर रहा, उन चीजों को बता रहा है। तो यहां एक बात आती है कि हमने ये भी सुना है कि अगर कोई सर्प दूध को स्पर्श कर ले तो फिर वो जहर हो जाता है, तो भले ही वो जो शब्द हैं बड़े सुंदर हैं या बड़े प्रभावी हैं, लेकिन अगर किसी अभक्त के मुख से आ रहे हैं तो वो फिर क्या गलत है? बिल्कुल गलत है। लेकिन हम किन से सुनते हैं? जो परंपरा में ही है, भले वो अभी शुद्ध भक्ति के स्तर पर नहीं लेकिन संघर्षरत है। तो अगर संघर्षरत भी है तो अगर वो उन शब्दों को कह रहा है तो उसमें जहर नहीं होगा, लेकिन दूसरी ओर कोई पाखंडी है और वो उन शब्दों को कह रहा है तो उसके लिए कहा गया कि सर्पोच्च, जैसे सर्प के सर्प ने दूध को स्पर्श कर लिया तो वो जहर हो जाता है, तो वो उनके लिए। जैसे समझिए कोई बाहर वाले जैसे ऐसी कुछ बुक पढ़कर वो कुछ कहना शुरू कर देना, कुछ पालन कर रहे हैं ना, संघर्ष कर रहे हैं आत्मसंयमी बनने के लिए, तो इसलिए उनका प्रभाव हम पर होता है क्योंकि उसी को दोहराया जा रहा है। जैसे हम सब हैं, अगर हम लोग भागवतम का पहला स्कंद पढ़ें जिसमें व्यासासन पर बैठने की योग्यता दी गई है, तो पता नहीं कितने जन्म लगेंगे हमें, हम लोग तो आराम से बैठकर बोल रहे हैं व्यासासन पर, लेकिन अगर वो योग्यता पढ़ लें तो बैठ ही नहीं सकते। तो फिर इसका अर्थ क्या है? जो बैठता है उसको ये पता होना चाहिए कि उसकी योग्यता नहीं है, और वो बैठा ही इसीलिए है कि जो शब्द हैं आचार्यों के उनको दोहराना है बस, और संघर्षरत रहना है कि जो योग्यता है उसको प्राप्त करने का हम प्रयास करें। तो अगर कोई व्यक्ति प्रामाणिक संघर्ष कर रहा है आत्मसंयमी बनने का है नहीं, शुद्ध भक्त बनने का अभी है नहीं, लेकिन अगर वो उस पथ पर है और दोहरा रहा है प्रामाणिकता से बिना मिलावट के उन शब्दों को, वो हमें प्रभावित निश्चित करेंगे। और इसका प्रमाण है इस कौन संस्था, श्रील प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, ठीक है, उन्होंने दोहराया तो जो सुन रहे थे उनके हृदय शुद्ध हुए, फिर उन्होंने दोहराया उनके, अब अन्य कई लोग ऐसे दोहरा रहे हैं जो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है, हम लोग जैसे शुद्ध नहीं है, लेकिन क्योंकि हम उन शब्दों को दोहरा रहे हैं तो स्वाभाविकता लोगों का हृदय बदलेगा, क्योंकि हमारे हृदय में शुद्धता भले ना हो प्रामाणिकता है, धोखा नहीं, तब हृदय परिवर्तित, ठीक है। यस, यही एक अर्थ है कि हम इस्कॉन में प्रगति तब कर सकते हैं, हम शुद्ध भक्त तब बन सकते हैं जब हम मिथ्याचारी ना हो, दिखावा ना करें, संघर्ष करें। हिंदी में कहावत है, गिरते हैं घुड़सवार ही मैदाने जंग में, तो गिरना कोई गलत बात नहीं है, माया से परास्त होना कोई गलत बात नहीं है, आप किससे परास्त हो रहे हो भगवान की शक्ति से, तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संघर्ष बंद कर देना, प्रामाणिकता छोड़ देना, मिथ्याचारी बन जाना कि दिखावा कुछ करें और करें कुछ, वो फिर आपके शब्द उतने प्रभावी नहीं होंगे। लेकिन हम लोग जैसे हम लोग संघर्ष करते हैं, हमारे ऐसा नहीं कि हम सब शुद्ध भक्त हैं, हमारे हृदय में पूरे कृष्ण के अलावा और कुछ आता ही नहीं है, हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं, हमारे अंदर अहंकार है, हमारे अंदर बहुत, लेकिन हम संघर्ष करते हैं उसको वश में करने का और कृष्ण की सेवा करने का। तो मिथ्याचारी ना हो व्यक्ति, वो बहुत जरूरी है। हाँ, अगर वो संघर्षरत है उसके लिए भगवान मदद करते हैं, आचार्यगण मदद करते हैं, लेकिन मिथ्याचारी के लिए तो फिर क्या किया। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई सो रहा है तो उसको जगाया जा सकता है, कोई सोने का नाटक कर रहा है उसको कौन जगा सकता है, ठीक है। ओके, यहाँ कुछ प्रश्न है। एक प्रश्न है कि जैसे हमने इस अध्याय में देखा और पिछले में भी कि जितने भी लोग हैं वो केवल कृष्ण के विषय में चर्चा कर रहे हैं, चाहे कृष्ण से हो या कृष्ण का विषय हो, उसे हमारे रोज के जीवन में हमें कैसे लाना चाहिए भक्त परिवार में और अन्य भक्तों को, हमारे समय का सदुपयोग कैसे करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा भक्तों से कृष्ण के विषय में चर्चा करने के लिए। तो हमें अपने आप को सही करना चाहिए या अन्यों को सही करना चाहिए या नहीं। हाँ, सो हमने वैसे थोड़ा सा तो इसका वर्णन किया था कि हम जिस स्तर पर हैं उस स्तर पर चर्चा कर सकते हैं, मत चित्ता मतगत प्राणा, प्रभुपाद जी के शिष्य हम लोग, जिन्होंने नहीं सुना कम से कम महामंत्र इत्यादि। पारिवारिक जीवन में हम रोज कैसे इस चीज को पालन कर सकते हैं, तो पारिवारिक जीवन में ये चीज पालन हो सकती है कि हम जब घर में रहें तो हम घर के नियम बनाएं। जैसे प्रारंभ इससे करना चाहिए, जैसे हम कहें कि नहीं बस पति पत्नी को घर में भी अन्य सदस्यों को केवल कृष्ण की बात करनी चाहिए, होगा नहीं, बहुत सारी बातें हैं और करने के लिए, घर चलाना है, कुछ ये हो गया वो हो गया, समाज में कुछ हुआ, तो क्या करना चाहिए। पहला चीज, कम से कम ये नियम बनाना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए दिन में एक घंटा परिवार का हर सदस्य बैठकर कृष्ण की कथा सुनेगा या चर्चा करेंगे आपस में। सुनना एक अलग होता है, जो सुना उस पर चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए सुबह का प्रवचन आपने सुना, अब परिवार वालों के साथ बैठिए और चर्चा कीजिए कि इससे क्या समझते हैं और हम क्या अपने मन में इसको ला सकते हैं, कैसे हम और अधिक इससे लाभ ले सकते हैं, इन चीजों पर हम लोग चर्चा करें। तो ये एक मार्ग है जिससे चर्चा प्रारंभ होती है। हम कई परिवारों को जानते हैं जिनका नियम है कि वो लोग सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन रात्रि के समय सब एक साथ बैठकर रात्रि का भोजन लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, और उस समय उनकी चर्चा केवल कृष्ण की होती है। वो एक मान लीजिए नियम जैसा है, शुरुआत से है, अब वही हो गया। वो ना अपने व्यापार की चर्चा करते हैं कि अरे आज इतना नुकसान हो गया या ये कर लेते, वो कुछ नहीं, उन्होंने नियम बनाया कि घर में जब रात को सब बैठते हैं तो वो कृष्ण की चर्चा करते हैं। तो देखिए कितना अच्छा है, सब बैठकर प्रसाद ले रहे हैं, पूरे डिनर टेबल पर बैठे हुए हैं सब या जैसे भी, और सब चर्चा कृष्ण की हो रही है कि ऐसा ये सुना मैंने आज, वहां पर ये कहा गया है, आज सुबह मैं कृष्णा बुक पढ़ रहा था उसमें ये लिखा था, भागवतम पढ़ रहा था ये लिखा था, तो ये चर्चा हो रही है। तो हम प्रारंभ करें हर समय के लिए, धीरे धीरे भाव बदलेगा। तो अगर ये दो बातें जो हमने बताई शुरुआत में उसको इम्प्लीमेंट करें कि एक घंटा सब बैठकर चर्चा कर लें घर में, एक घंटा हो आधा घंटा हो जैसा भी, और फिर जब रात्रि का भोजन लें जो साधारणतः सारा परिवार साथ में लेता है, तो उस समय भी कृष्ण की चर्चा हो, उस समय इधर उधर की चर्चा ना हो। तो ऐसे कुछ समयों के पे जहां अवसर है भगवान की चर्चा प्रारंभ करें, फिर धीरे धीरे भगवान स्वतः आपको ये प्रेरणा देंगे कि कैसे और ज्यादा केवल कृष्ण की चर्चा हो सकती है। तो ये पहला मार्ग है। दूसरा मार्ग है कि हम जब भी जिससे मिलें, चाहे हमारा कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी बात क्यों ना हो, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कम से कम एक वाक्य भगवान के विषय में बोल कर जाएं। आप अपने क्लाइंट्स को मिलते हो, आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को मिलते हो, आप अपने बॉस को मिलते हो, आप अपने कलीग्स को मिलते हो, जिनसे आपको बहुत कुछ इधर उधर की बातें करनी है, ठीक है कर लिया, एक वाक्य आखिरी में या कहीं बीच में ऐसा जरूर आना चाहिए जो भक्ति से जुड़ा। तो उससे क्या होगा, आपकी चेतना शुद्ध रहेगी, आप ऐसे वातावरण में भी ध्यान यही रखोगे कि मुझे एक वाक्य कम से कम कृष्ण के विषय में बोलना है। तो इन चीजों का अभी पालन कीजिए, आगे कृष्ण स्वयं आपको प्रेरणा देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण के जितने भी विग्रह हम देखते हैं उसमें राधा रानी तो तिलक नहीं लगाया जाता, भगवान को लगाया जाता है, तो भगवान तिलक क्यों धारण करते हैं और राधा रानी क्यों धारण नहीं करती, इसको समझाइए। वैसे राधा रानी को श्रृंगार के रूप में तिलक लगाते हैं, वो तिलक साधारणतः नहीं देखते हैं, लेकिन वैसे राधा रानी को लगाया जाता है। और भगवान को कई स्थानों पर तिलक नहीं लगाते हैं, कई स्थानों पर लगाते हैं तिलक। तो श्री कृष्ण तिलक क्यों, हम लोग क्यों तिलक लगाते हैं, भगवान के चरणों को अपने मस्तक पर धारण कर रहे हैं। श्री कृष्ण क्यों लगाते हैं, वो भक्तों के चरणों को अपने मस्तक पर धारण करना चाहते हैं। और श्रीमती राधा रानी वो तो केवल श्री कृष्ण के चरणों को लगाएंगी अपने मस्तक पर, तो वो तो और किसी के चरण के लगा नहीं सकती। लेकिन श्रीमती राधा रानी पूर्ण रूप से कृष्ण को समर्पित हैं, और कृष्ण को आनंद आता है कि जब श्रीमती राधा रानी अच्छी तरह श्रृंगार करके उनके सामने आती हैं, और ये जो तिलक की भावना है, जैसे कि चरणों को लेकर मस्तक पर धारण करना, ये भक्त के लिए है कि जहां भक्त भगवान के अपूर्ण आश्रय में जाता है। राधा रानी पहले से आश्रय में है, कृष्ण वैसे ही बहुत प्रसन्न है उनसे, तो हो सकता है इस कारण से श्रीमती राधा रानी नहीं लगाती हो। वैसे श्रृंगार के समय तो निश्चित उनको बहुत सुंदर श्रृंगार किया जाता है, सो फिर भी और कोई महत्वपूर्ण कारण होगा तो हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि श्रीमती राधा रानी क्यों तिलक नहीं लगाती हैं। ठीक है, अधिक मास कैसे पालन करें, 17 तारीख से है ना अधिक मास, आज क्या तारीख है, 11, 17 को क्या है, कौन सा वार है, नहीं यहां पर होगा ना, एक मिनट, ओके 17 तारीख को गुरुवार है, ठीक है, तो उस दिन प्रवचन नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये इसी हफ्ते में आखिरी होगा। अधिक मास पालन करने के लिए, वैसे हम अधिक मास के ऊपर प्रवचन देने वाले हैं, सीरीज देने वाले हैं अधिक मास की कथा, लेकिन संक्षेप में आपने पूछा है, तो अधिक मास ये बड़ा महत्वपूर्ण महीना है कर्मकांड की दृष्टि से। इसको मलमास कहते हैं क्योंकि कोई अच्छे कार्य नहीं किए जाते कर्मकांड की दृष्टि से, लेकिन भक्ति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। भक्त इंतजार करते हैं कब पुरुषोत्तम महीना आए और उसमें भक्ति कर सकें। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में विस्तार से पुरुषोत्तम महीने का महात्म्य दिया गया है, और वर्णन बहुत सारे हैं, जब हम कथा करेंगे उसमें क्या क्या कथाएं हुई पुरुषोत्तम महीने में, किस किस ने पालन किया, द्रौपदी इत्यादि सबकी कथा आती है। तो प्रमुखतः इसमें पालन करने योग्य जो चीजें हैं, तो एक बड़ा महत्व दिया गया है दान को पुरुषोत्तम महीने में, दूसरा भक्तों को भोजन कराना। और हमारे संस्था में हम लोग देखते हैं पुरुषोत्तम महीने में लोग स्वयं बड़ी तपस्या करते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि अच्छी तरह भक्तों को भोजन करा सकें, तो भोजन मतलब प्रसाद दे सकें। और तो दान करना, बहुत दान किया जाता है। और भक्ति की दृष्टि से हम जप को बढ़ा सकते हैं, ये भी पुराणों में कहा गया है कि जप को बढ़ाना चाहिए, ताकि अच्छी तरह से भगवान के नाम को हम लें और भगवान का स्मरण बढ़े हमारा। थोड़ी तपस्या करनी चाहिए, कई भक्त पूरे महीने बहुत सी तपस्या करते हैं। तपस्याओं में कुछ भक्त तपस्या करते हैं वो एक ही वक्त लेते हैं, कुछ भक्तों की तपस्या होती है कि पूरा महीने केवल एकादशी का भोजन ग्रहण करते हैं, फलाहार। तो ऐसे अलग अलग उत्तर पुरुषोत्तम महीने का पालन करते हैं वे लोग, मगर मूलतः कुछ तपस्या होनी चाहिए। एक तपस्या निश्चित सभी भक्त कर सकते हैं कि वो प्रण लें कि पूरे इस महीने में, पुरुषोत्तम महीने में, ये रोज सुबह मंगल आरती के लिए उठें, ये किया जा सकता है। तो ये भी एक तपस्या है कि रोज सुबह मंगल आरती अटेंड करें। हमारे यहाँ मंगल आरती रोज सुबह 4:30 बजे होती है और हम लोग दिखाते भी हैं लाइव, इस पे जाता है, लेकिन बहुत कम भक्त देखते हैं घरों से। तो कम से कम पुरुषोत्तम महीने में आप लोग ये प्रण ले सकते हैं कि हर रोज मंगल आरती अटेंड करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी तपस्या होगी। जप अधिक करेंगे और भागवत का कोई एक हो सके तो स्कंद पूरा हम पढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा, 8वां स्कंद जिसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तो ऐसे कई चीजें, तो भागवत का एक स्कंद पढ़ सकें, तो ऐसी बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं। विस्तार से सुनने के लिए आप इंतजार कीजिए, जब ये पुरुषोत्तम महीने की कथा हम प्रारंभ करेंगे उसमें बहुत विस्तार से कहेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे।